ओम शांति। सभा में हम सबके अति प्रिय आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पधार चुके हैं। सभी करतल ध्वनि से आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत इस मंच में स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आज हम सबको आपसे मिलने का मौका मिला। आपका संक्षिप्त परिचय। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी कार्यकारिणी सचिव माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के, आप गवर्निंग मेंबर मैनेजमेंट कमेटी ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के हैं, आप अध्यक्ष भी हैं शिक्षा प्रभाव माउंट आबू के, डायरेक्टर हैं द क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ प्रोजेक्ट के, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं लिविंग वैल्यूज एंड एजुकेशन प्रोग्राम के, आप निर्माता हैं हु एम आई 3D मेडिटेशन शो, लेजर शो इत्यादि अनेक सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट जो हम बाबा के इस यज्ञ में देखते हैं। साथ ही आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में बाबा के इस यज्ञ में बहुत ही कम उम्र 19 साल की आयु में ही सेवा में बाबा के यज्ञ में आ चुके हैं और आप 55 वर्ष से भी अधिक समय से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप अनेक देश विदेश के अनेक स्थानों में 50 से भी अधिक देशों में भ्रमण कर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। साथ ही आपको रांची यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 से ही डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आप बाबा के इस महायज्ञ में बहुत ही रचनात्मक रूप से प्रति समय अनेक मेहमानों के अनेक बाबा के वॉरिस क्वालिटी की आत्माओं के साथ जुड़कर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम्स आयोजित करने में आपका विशेष हाथ है। आप बाप समान बनने के संकल्प को लेकर अपने सभी साथियों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से इस ईश्वरीय यज्ञ की सभी की पालना कर रहे हैं। ऐसे अति विशेष आदरणीय भाई जिसे आज हम सुनेंगे, निर्विघ्न स्थिति कैसे बनी। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सुधर में सदा स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले कराने वाले और शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सब, हम सब शांति का मैसेज देने वाले आप सबको प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। हम सभी ईश्वरीय शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में, योग का महत्व को जानने के बाद में, इस ज्ञान योग का परिणाम को जानते हुए हमारा जीवन को निर्विघ्न बनाना, निश्चिंत बनाना, निर्विकारी बनाना, निराकारी दुनिया को चलने की यात्रा करना और निराकारी दुनिया से इस धरती पर अवतरित आत्मा के रूप में, परिष्ठा के रूप में, देवता के रूप में पुनर् अवतरित होना, इसको हम कहते हैं गोसुन एंड कमसुन। बाबा कहते हैं एक सेकंड में मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में शरीरदारी, एक सेकंड में अशरीरदारी। इस अनुभव का आधार से व इस ज्ञान को अनुभव में परिवर्तन करें तब तो ऑटोमेटिकली इस जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता। यदि आता है तो हमारा मन का ही, हमारा संस्कार का, हमारा स्वभाव का, अपना सोच का, अपने व्यवहार का, अपना संबंधी आदि में किसी भी प्रकार का मोह ममत्व होता है तब तो ऑटोमेटिकली उनको कोई न कोई विघ्न आएगा, कोई न और कुछ ड्रामा अनुसार, कर्म के हिसाब किताब के अनुसार, और कोई न कोई पुरुषार्थ में आलस्य होने के कारण वो कोई न कोई बात को सही रीति से ना जानने के कारण मनुष्य को यह स्वाभाविक रीति से विघ्न आता है। परंतु विघ्न से मुक्त होना, हम सभी विघ्न से मुक्त होने वाले हम कभी कौन से? विघ्नेश्वर बनना। यदि विघ्न भी आता है तो हम सबको बाबा ने पहले टाइटल दिया गणेश, विघ्नेश्वर और विघ्न से मुक्त करने वाले। हम इस दुनिया के ऊपर राज करने वाले, बाबा का दिल में राज करने वाले, सूक्ष्म वतन में राज करने वाले, मूल वतन में भी बाबा के समीप रहने वाले, ऐसे इन बात को हम लोग सही रीति से अनुभव करते हैं। हमारा यात्रा केवल साकार दुनिया का ही नहीं है, आकारी दुनिया का भी हमारा यात्रा है और परंधाम भी हमारा घर है। बाबा का समान बन करके, निराकारी बन करके, निर्विकारी बन करके, निश्चिंत होकर के आत्मा अपना स्वधर्म में स्थित हो। यदि हम इस कार्य को दौड़ाते रहेंगे, इस मिशन को दौड़ाते रहेंगे, इस स्थिति को दौड़ाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम निर्विघ्न बनेंगे। यदि कोई भी विघ्न भी आता है, आपको अनुभव करा के, आपको तोपा दे करके, आपको शक्ति दे करके, आपको अनुभव बना करके, आपको जीवन सदियों से जो विश्वास करते आए, और विश्वास कभी कभी धोखा हो जाता है, और उस विश्वास को, वह संस्कार को, वह स्वभाव को, वह चिंतन को हम मुक्त होकर के सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। बाबा कहते हैं एक अंक में मुक्ति, एक अंक में जीवन मुक्ति। जब एक अंक में मुक्ति, एक अंक में जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा संस्कार परिवर्तन होगा। क्योंकि इस समय में हमारा कम से कम 63 जन्मों की कुछ संस्कार है, और इस समय में कलयुग के घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग के संस्कार भी थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में भी उसका छाया, उसका असर, उसका प्रभाव डालता है कहीं न कहीं, चाहे किसी भी रूप में, माया के रूप में, विधि के रूप में, बंधनों के रूप में, प्राप्ति के रूप में, अप्राप्ति का अनुभव करने के रूप में, इन प्रकार का, इसका अनेक प्रकार का ये अनुभव होता है। इसके लिए हम लोगों को बाबा मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला आप सबको। बाबा मिलने के बाद में सब कुछ मिला, किस किस को क्या क्या मिला, हाथ खड़ा करें। वाह, इनके लिए तो जोर से ताली बजाए। जब बाबा मिला सब कुछ मिला, इसके लिए ऐसा अनुभव करेंगे बाबा का, दिन सर्व संबंध बाबा के पास होगा, सर्व शक्तियां बाबा के पास है, ज्ञान बाबा के पास है। सबको देवता बनाने के लिए आया और विश्व का मालिक बनाने के लिए, सूक्ष्म वतन वासी बनाने के लिए, मूल वतन वासी बनाने के लिए आया। सिर्फ शिक्षा देकर के उड़ के चले जाएंगे नहीं बाबा। और बाबा इस समय में हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है, उपस्थित है बाबा। किस किस का अनुभव है? ऐसा नहीं बाबा वतन में चले गए, वापस चले गया, ऐसा नहीं है। संगम युग में बाबा हमारा साथ है। जब सर्वशक्तिमान हमारा साथ है तो ऑटोमेटिकली सर्व प्रकार की विघ्न कहो, माया कहो, अपवित्रता कहो, अज्ञान कहो, संस्कार में कोई दोष कहो, ये सारी दोषों से मुक्त करके एक नया दुनिया के लिए बाबा हमको ले जा रहे हैं इस समय। ऐसी दुनिया के मालिक लोगों को इस दुनिया का आकर्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अज्ञान में है उनको आकर्षित हो सकता है, वह अप्राप्त है उनको आकर्षित हो सकता है, अनुभव नहीं उनको आकर्षित कर सकता है, और चिंता में डूबे हुए आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए कोई ना कोई चिंता उनको पीड़ित करता है, और कभी कभी वो पीड़न भी उनको एक शोषण के रूप में आ सकता है। इसके लिए इस समय में बाबा हम बच्चों को, सबको ये स्थिति का अनुभव कराना चाहता है, और सदा गोद में रहे बच्चे। माया की गोद से मुक्त हो गया, परंतु अभी किसकी गोद में रहना? बाप दादा की गोद में रहना, अशरीरी बन करके रहना, अव्यक्त बन करके रहना, निराकारी बन करके रहना। इस स्थिति का हम लोग अनुभव करेंगे तो इस दुनिया की कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकते। आएंगे तो ब्राह्मणों को टच नहीं कर सकते, दुनिया में तो आ सकता है, दुनिया तो उससे भरपूर है डेली, परंतु हम ब्राह्मणों को निश्चिंत बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा इस समय में हर बच्चों को अमृत वेले से लेकर के सारा दिन रात जब जब हमारा कॉन्शियस, हम तो बाबा तो नींद तो नहीं करता है, बाबा तो सादा बच्चों को 24 घंटे 365 डेज बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित। जब भी बाबा को याद करेंगे तुरंत बाबा मदद करते हैं। कोई भी परिस्थिति आता है आपको इतना ही कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। मेरा बाबा जो कहते हैं आपका अनुभव कराता है, सहयोग का अनुभव कराता है, शक्ति का अनुभव कराता है, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कराता है और उड़ती कला का अनुभव कराता है। ऐसा अनुभव करते हैं आप सभी? कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करें। वाह, ऐसा लगता है बंगाल, बिहार, नेपाल के भाई बहने इन चीजों से मुक्त है। बाबा का दिल के समीप है, बाबा का संस्कारों से संपन्न है और परिवार में विश्वास है और परिवार के साथ खुशी और आनंद मनाते हैं। जब खुशी और आनंद का अनुभूति होता है तब तो विघ्न की महसूस नहीं हो सकता, उस स्नेह का महसूस होता है, सहयोग का महसूस होता है, शक्ति का महसूस होता है। और एक दो को स्नेह और सहयोग और शक्ति का आदान प्रदान करना अर्थात गिव ब्लेसिंग एंड टेक ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग देने वालों को ब्लिसफुल स्थिति ऑटोमेटिकली अनुभव हो सकता है। आप सभी ब्लिसफुल स्थिति का अनुभव करते हैं? कौन कौन करते हैं? इसमें थोड़ा लोग सोच रहे हैं। ब्लिसफुल आनंद की स्थिति का अनुभव करें। हमारा संस्कार ही आनंद है क्योंकि स्वच्छ संस्कार, शुद्ध संस्कार, ईश्वरीय संस्कार अर्थात देवताओं के संस्कार। अभी देवताओं के संस्कार है तो कलि युग में वह संगम युग में हमारे लोग टच नहीं कर सकते माया, ऐसे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा, दादी को देखा, दीदी को देखा, महारथियों को देखा, गुलजार दादी को देखा, अनेक दादियों को देखा, इवन वर्तमान समय में हमारा दादिया है वो हमारे बड़ी बहने हैं, बड़े भाई हो, वो लोग कैसे रहते हैं सदा, उस स्थिति का अनुभव करते हैं। उसके लिए हमको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, मार्गदर्शन मिलती है। और ऐसे मार्गदर्शन के छत्र छाया में हम सभी स्थित है तो ऑटोमेटिकली बाबा बच्चों को अपनी बाहों में, अपनी श्रीमत की गोद में, भले स्थूल शरीर की बाह नहीं है, श्रीमत का बाहों में बाबा हमारा सबको, हमारे सिर पर, हमारा जीवन के ऊपर, हमारा भविष्य के ऊपर हमको बाबा सदा अपना बना करके रहे। जो बाबा बच्चों को अपना बनाया उनको माया आ सकता है, परंतु परीक्षा करने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए, निश्चिंत बनाने के लिए, बाबा का मदद का अनुभव करने के लिए, परंतु उस अनुभव जितने पावरफुल होगा उतना निश्चय बुद्धि होगा, उतना निश्चय बुद्धि जितना होगा उतनी सफलता हमको अनुभव करेगा। इसके लिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन व डिवाइन गिफ्ट है हम सबको। ये डिवाइन गिफ्ट सबको मिला है? किस किस को मिला आप तरह करें? वेरी गुड, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डिवाइन गिफ्ट हमारे पास ये है तो वो लिफ्ट के रूप काम करेगा, वो लिफ्ट के रूप में काम करेगा तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे। जब उड़ने वाले हो तो चलने वाले नहीं, और उड़ने वाला है तो उसको जैसे एरोप्लेन में उठते हैं तो ऊपर जितने जितना जाते हैं जैसे आराम में बैठे हुए, निश्चिंत में बैठे हुए, निर्विघ्न में बैठे, उसके लिए थोड़ा दिमाग खराब होता है और ढीला होता है तब तो उसको कोई ना कोई डर पैदा होता है। इसके लिए डर से मुक्त कर दिया बाबा, भय से मुक्त कर दिया बाबा, और संस्कार ऐसा संस्कार बना दिया सदा निश्चिंत रहने के लिए। और देवताएं का संस्कार होगा तो ऑटोमेटिकली देवता का अनुभव करेगा, गिव ब्लेसिंग एंड ट्रीट ब्लेसिंग ये अनुभव करेंगे। मुझे आशा करता हूँ आप सभी इस अनुभव के आधार से उस अनुभव करने के लिए मधुबन में आए हुए, इस अनुभव करने के लिए आए हैं डायमंड हॉल में बैठे। डायमंड हॉल में बैठना नहीं, डायमंड बन के जाना, हम सभी डायमंड बन करके आत्मा डायमंड अर्थात जो बाबा ने बेदाग हीरा, दादी प्रकाशमणि जी को बाबा कहते थे भयनूर हीरा, ऐसे तो हम सब हीरा ही है, परंतु हीरा के अंदर कोई ना कोई पूर्व संस्कार होगा, वो सब तो थोड़ा बहुत उनके अंदर दुख का, भय का, चिंता का, अस्थिरता का, अभय का, अनुभव करेगा। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम सब बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। इस समय में बाबा हर बच्चों को मुक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं। इस समय में बाबा आपका गोद में लेकर के उठती कला का अनुभव कराना चाहते हैं। इस समय में बाबा हर बच्चों को इस दुनिया में एक अवतरित आत्मा के रूप में, फरिश्ता के रूप में, शांति दूत के रूप में, निर्विघ्न के रूप में देखना चाहते हैं। यदि हम अपने कमजोरी को, कमियों को, अवगुणों को, कोई न कोई हमको जीवन में है तब तो कोई न कोई विघ्न है। इसके लिए अवगुणों को भी देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, करना भी नहीं, इसके लिए सोचना भी नहीं। इसके लिए ऐसी गुणी मनुष्य को महत्व है और गुणी जीवन है, गुणी शक्ति है। ऐसे गुणवान बनने के लिए बाबा इस समय में प्रत्येक आत्मा को और अपने गोद में अमृत वेले से लेकर के उर्सी कला का अनुभव करें। कौन कौन अमृत वेले बाबा का उर्सी कला का अनुभव करते हैं और बाबा का समीपता का अनुभव करते हैं? बहुत वेरी गुड, धन्यवाद। ये अनुभव आपको रिपीट होना चाहिए, ये अनुभव नेचुरल होना चाहिए। एक गुणों का अनुभव करते हैं परंतु उसका नेचुरल स्वभाव बनाना, उसका नेचुरल संस्कार बनाना, नेचुरल स्थिति बनाना, और स्थिति हम सबका शक्ति और दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। कहीं भी हो, किधर भी हो, किस परिस्थिति में भी हो और किसी संगठन में भी हो, परंतु आप सभी ओम शांति अर्थात वो अनुभव का करने वाले, कराने वाले बनेंगे। इसके लिए मैं अभी अधिक समय नहीं लेंगे, मैं अपना आदरणीय प्रादाजा वीरेंद्र जी को बुलाता हूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा प्रॉब्लम है और उसको बाजा बजता नहीं ठीक ढंग से। इसके लिए थोड़ा तो बाबा को भी ये होता था, ब्रह्मा बाबा को उनका बाजा ठीक नहीं है ऐसा बाबा बोलता था। इसके लिए परंतु आप इतने दूर से बाबा का मधुबन में आए हैं, कई परिस्थिति को प्रयास करते आए हुए, आप सबको नया साल में 2023 मेरा अपने दृष्टि से देखता हूँ, इट इज एन एरा ऑफ ब्रह्म कुमारी, इट इज एन एरा ऑफ डिविनिटी, इट इज एरा ऑफ ट्रूथ, इट इज एन एरा ऑफ रिविलेशन, इट इज एन एरा ऑफ वंडरफुल। हर चीज में बाबा ने बच्चों को आगे बढ़ने का, उड़ने का अनुभव करा रहे। इसके लिए ऐसे अनुभव करो, आने वाले दिन अपना ही दिन होगा, अपना ही राज्य होगा, अपना ही संसार होगा, अपने ही संस्कार जो बाबा ने दिया हुआ ऐसा होगा। ऐसी संस्कार संपन्न बन करके रहेंगे तो हमारा ये 30 जन्मों का भाग्य वर्तमान समय में देख सकता है और भविष्य को दर्शा सकता है और दुनिया में भी इसको दिखा सकता है। ऐसा दिखाने वाले, ऐसा दर्शाने वाले, ऐसे अनुभवी आत्मा को बाबा अमृत वेले से लेकर के वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बेटे बच्चे, वाह मेरे तपस्वी बच्चे, वाह मेरे विश्ववन और देवता, ऐसा खुद बाबा महिमा करते करता ही ना बाबा बच्चों का। महिमा के सिवाय और कुछ करता ही नहीं बाबा, एक मदद एक महिमा। इसके लिए आप सभी संगम युग में महिमा मंडली का यादगार बन जाते हैं संगम युग में। अभी हम दादियों को बाबा सुबह से शाम तक याद करता था, महिमा करके करके उनको आप समान बने। ऐसे बच्चों का महिमा बाबा खुद अपने मुख से करता है, अपनी वाणी से करता है, अपने संकल्पों से करता है, अपने वरदान दे करके करते हैं। ऐसी वरदानी बाप दादा से वरदान प्राप्त किए हुए लोगों को विघ्न क्या चीज है, ऑटोमेटिकली उससे मुक्त हो जाए। ऐसी मुक्ति, जीवन मुक्ति अनुभव करें। आप सबको अपने दिल की बधाई, दिल की शुभकामनाएं और नए साल में, अभी इस साल 23 इज अ वेरी वेरी वंडरफुल न्यू ईयर फॉर ब्रह्म कुमारी। आपने सभी देखा 2022 से एक आजादी के अमृत महोत्सव, वो तो अमृत महोत्सव बाबा ने अमृत हमको पिलाया परंतु आजादी हमको दिलाया। दुनिया की आजादी अलग है, विकारों से आजादी हो जाए, भय से आजादी हो जाए, अप्राप्ति से आजादी हो जाए और सदा निर्विघ्न बने, इसके लिए हमको बाबा ने ज्ञानामृत पिलाया और पिलाते रहेंगे। हम सब भी ऐसे पिलाते रहेंगे तो दुनिया हमारे सम्मुख में दिखाई दे रहे, एक तरफ विनाश भी दिखाई दे रहे, एक तरफ स्थापना भी दिखाई दे, एक तरफ प्रकृति का हलचल भी दिखाई दे रहे, हम ब्राह्मणों का निश्चल निश्चिंत जीवन भी दिखाई दे रहे। इसके लिए प्रत्येक ब्राह्मण लोग निश्चिंत निर्विघ्न बनेगा, ऑटोमेटिकली नया दुनिया का अनुभव होगा और सारी दुनिया में ओम शांति प्रत्यक्ष होगा। इसके लिए इन ओम शांति के साथ साथ आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। 2-3 मिनट 5 मिनट हम योग करेंगे, उसके बीच में वीरेंद्र भाई जी आप पधारिए। आप सबको आपका परिचय तो बहन जी देंगे, हम सबका परिवार का वरिष्ठ भाई है और वेस्ट बंगाल में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सेक्टर के साथ स्टेट हेड डील करते हुए इन्होंने बाबा का ध्यान को डेली आकर के मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, उसके सिवा अनेक लोगों को सेवा करते हैं। आपका अनुभव वंडरफुल एक्सपीरियंस है, मैं सोचता हूँ आपसे अनुरोध करता हूँ अपने एक्सपीरियंस भी सुनाते हैं। और इस समय में इन्होंने स्टेट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का कमिश्नर भी है, इसके लिए हम जोर से ताली बजा करके बाल साहब को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डेंगू भी पता रहेंगे
शांति। एक बार हम जोरदार ताली बजाकर आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब जी और अंजना बहन का दिल से स्वागत करते हैं। पिछले 9 वर्ष से आप ज्ञान में हैं और हम कह सकते हैं कि लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा है। बाबा के घर में जब से आप आए हैं, कलकत्ता में जब रहते हैं, आप उस समय पर डीजीपी थे, जितना भी आपको टाइम मिलता था, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि आपने बाबा के घर में मुरली क्लास या योग मिस किया हो। और अभी रिटायर्ड होने के बाद भी आप हर रोज 2 टाइम अपना ज्ञान और योग का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। 2 वक्त आते हैं, सुबह भी आते हैं मुरली सुनने और शाम को भी 1 घंटा विशेष योग करके जरूर जाते हैं। तो इसीलिए अपने अनुभव के आधार से कि इतने बड़े पोजीशन पर रहकर जब आप डीजीपी थे तो उस समय पर आपके सामने बहुत प्रकार के चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस को आपने बाबा के ज्ञान और योग से कैसे फेस किया और अभी भी आप स्टेट कमिश्नर ऑफिसर हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो इस पोजीशन पर है कि भी आप किस आधार से अपने आप को चला रहे हैं, तो हम सुनेंगे आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब जी से।
ओम शांति। मैं मृत्युंजय भाई जी का पहले ही आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का ये मौका दिया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। अभी बहन जी ने बताया कि मैं पिछले 9 साल से ज्ञान में हूं। मेरी ज्ञान की जर्नी और राजयोग की जर्नी इस प्रकार शुरू हुई कि वो टीवी से शुरू हुई, टेलीविजन से। मैं पीस ऑफ माइंड चैनल देख रहा था, मतलब टीवी देख रहा था, उसमें अचानक पीस ऑफ माइंड चैनल लग गया और उसके बाद उसमें कोई प्रोग्राम आ रहा था, मुझे वो प्रोग्राम याद नहीं, लेकिन मुझे प्रोग्राम अच्छा लगा और उसके बाद मैं वो टीवी देखता रहा, चैनल देखता रहा, तो उसी से मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने राजयोग ज्ञान को टीवी पर लगभग 1.5 साल तक मैंने उसको फॉलो किया और उसी में ही जितना धीरे धीरे समझ में आया अच्छा लगता था और मैं योग भी करने लगा और यहाँ तक के जो है अमृत वेला भी करने लगा। और पहले मैं खाने पीने की शुद्धिकरण का जो है उसमें जैसे कहते हैं तो वो बात भी उसमें फॉलो करने लगा, नॉन वेज छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ना शुरू किया और इस प्रकार चलता रहा। फिर उसके बाद जब ये सभी कहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में बताते थे कि जो है जैसे कि आप घर में पूजा करते हैं और मंदिर में जाके पूजा करेंगे तो फर्क होता है, तो इसी प्रकार योग घर में करते हैं और सेंटर में जाकर के योग करना, संगठन में जाके योग करने में फर्क है। तो धीरे धीरे मैं 1.5 साल के बाद फिर मैं कलकत्ता में एल्गिन रोड सेंटर है, कलकत्ता म्यूजियम, मैं वहां पर गया और वहां पर फिर राजयोग सीखा। काफी पहले पता था जो भी मैंने फॉलो सीखा था टीवी से और फिर उसके बाद से फिर वो जर्नी अब चल रही है। और समय के साथ साथ हम सबका, मुझे लगता है सभी का ये एक्सपीरियंस है कि हमारा जो योग होता है वो उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहती है, नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं और हमारे जो है योग की जो क्वालिटी बढ़ती रहती है। और आजकल तो हम जो टीवी पर जब प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट विजुअलाइजेशन आते हैं और उससे भी जो है फिर धीरे धीरे हमारा विजुअलाइजेशन बढ़ता है और जो जो आपकी हमारे में पवित्रता बढ़ती है, बुद्धि और क्लियर होती जाती है और जो है ये सब चीजें बढ़ती रहती हैं और नए नए एक्सपीरियंस। वैसे तो मुझे ऐसा कोई विशेष, जब मैं ये शुरू किया तो ऐसा कोई वो नहीं था कि विशेष में से कोई कुछ चीज खोज रहा था। मैंने इसे बताया कि अच्छा लगा प्रोग्राम और उसी में मैं पहले कभी कभी मेडिटेशन करता था, अपने जहां जैसे सीखा वैसे उसी प्रकार से, कि कभी जब कई सालों से मेडिटेशन में कभी सोच लिया कि चमकती हुई लाइट है, कभी किसी ने सोचा कि आपको जो है आकाश में जो है नीली लाइट दिखाई देगी, कभी किसी ने कहा किसी पॉइंट पर जो है आप एकाग्रता करें, तरह तरह के वो जो चलते हैं सुन लेता है आदमी कहीं पर किसी तरह से, किसी ने कहा ओम रिपीट करने से अच्छा रहेगा, तो सभी में ठीक था, चल रहा था, अच्छा लग रहा था। मगर जब ये राजयोग शुरू किया तब से जो है एक्सपीरियंस अलग अलग है। और इसमें तो एक्सपीरियंस जैसे आप सभी भाई बहनों के होंगे वो उसी प्रकार के हैं कि आपके अंदर से जो कमियां हैं वो निकलने लगती हैं। जैसे मुझे पहले अपने में इरिटेशन और जो गुस्सा जो है वो महसूस होने होता था, कि बल्कि मुझे ऐसा भी लगता है कई बार कि जब मैं ज्ञान में आया तो जैसे कहते हैं ना बाबा की बीमारी उथलेगी एक बार, तो मुझे लगा था एक बार गुस्सा बढ़ भी गया। पर वो धीरे धीरे जो है अब समय के साथ जो जो योग बढ़ा है, ज्ञान की समझ बढ़ी है, तो वो जो है अब उसकी जो गुस्से की और इरिटेशन की इंटेंसिटी कम हो गई है, ड्यूरेशन कम हो गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, और उसके बाद जब गुस्से के बाद पश्चाताप होता है तो वो भी कम हो गया। क्योंकि अब तो हमें मालूम है ना कि जब गुस्सा आया है और मैंने गुस्सा किया या मैंने इरिटेशन की तो वो अब मुझे लौटेगा। ये तो ज्ञान का है, ये कर्मों का सिद्धांत है। मगर अब फर्क ये है कि बाबा मेरे साथ है और जो है, और मैं दोबारा संकल्प ये करता हूँ कि दिल शिकस्त होने की बजाय, बारिश आने पर कभी कभी मैं भीग जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंट्रोल है, लेकिन बहुत हद तक है, काफी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन ये है कि जब अगर भीग भी गए तो दोबारा संकल्प ये नहीं कि दिल शिकस्त होते हैं, बल्कि संकल्प ये करते हैं कि अब हम शांत आत्मा है, और इससे जो है बड़ा अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी रहती है। ज्ञान में आकर के कई तरह से जैसे कहते हैं कि आप में शक्तियां आ जाती हैं, तो एक तो ये है कि जैसे परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति जो है, मैं आपको एक बात बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मुझे जो है ड्रामा अनुसार स्टेट के डीजीपी का रोल अदा करने का मौका मिला, तो उस समय कोरोना आ गया। तो कोरोना में तो आप जानते ही हैं कि ये कोरोना नई बीमारी थी और किसी को पता नहीं था किस तरह से डील करना है, इवन जो मेडिकल डॉक्टर्स जो थे उनको भी कम पता था, तो उनको कम पता होने के कारण, नई चीज होने के कारण सभी को कम था, और सबसे जो मेन फाइट करने वाले थे वो डॉक्टर्स थे, पर साथ में पुलिस भी थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस भी थी, क्योंकि उसमें एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा थी, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, और फिर सब सप्लाई चेन मेंटेन रखनी है, लोग घर में तो रहेंगे लेकिन खाना पीना ये सब सप्लाई चलती रहे और तरह की कोई बदमाशी ना हो, आपको घर से जाना नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन की जो ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहे, कई तरह की बातें थी। ये सब हो रहा था, अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पुलिस फोर्स के लोगों की भी मृत्यु हो गई। अब जब और उनको रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा और उसी में ही मृत्यु भी हो जाए, तो जो है थोड़ा एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो जाता है। तो उस समय मुझे बाबा या कैसे, मैं ज्ञान को ही कहना चाहूंगा कि मुझे ये टचिंग हुई कि मेरे जो सब साथ हैं, पुलिस फोर्स जो है वेस्ट बंगाल की प्राय 2 लाख प्लस है, तो ये सब लोग रास्ते में खड़े हैं और मैं जो है यहाँ हेडक्वार्टर्स में हूँ। उन दिनों जो है आपको सबको पता है, ज्ञान में भी बड़ा परिवर्तन आया है कि कोरोना के कारण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो ये है ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत शुरू हो गए, तो उसी टाइम ये कॉन्फ्रेंस वगैरह भी शुरू हो गई थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, सब ठीक था, कुछ जाने की जरूरत नहीं थी। मगर मेरे को विचार ये आया कि जब ये हमारे जो जितने भी लोग हैं, मैं तो हेड होकर के यहाँ पर हेडक्वार्टर में हूँ और वहां पर भी वो सब था ही कि आप मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे हाथों को और जो है डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ये सब तो था, मैं तो अपने को सेफ कर रहा हूँ, पर मुझे ध्यान आया कि जब मेरे जितने लोग हैं 2 लाख प्लस, ये सब लोग तो रास्ते में खड़े हैं, उनके घरवाले कितना डर रहे होंगे, वो लोग खुद कितना डर रहे होंगे, और ये जब मुझे विचार आया तो फिर ये भी था कि अपनी सेफ्टी का, पर सेफ्टी का भी बाबा ने जैसे बता रखा है कि आप किसी को कोई बीमारी होगी या किसी को कुछ होगा दुख, तो वो इसलिए नहीं होगा कि कोरोना वायरस है, वो इसलिए होगा कि आपके भाग्य में है, और अगर भाग्य में है तो आप चाहे बाहर जाएं या ना जाएं। तो मुझे इस बात से मैंने ये डिसीजन लिया कि जो है मेरा काम इस वक्त ये है कि मुझे अपने जो जितने भी सभी जो साथ हैं मेरे कुलीग्स जो रास्ते में खड़े हैं, सब जिलों में काम कर रहे हैं, एसपीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, तो जो है वेस्ट बंगाल काफी बड़ा स्टेट है, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मुझे वहां जाना चाहिए और जितनी हमारी पुलिस फोर्स है जो है उनसे मुझे मिलना चाहिए। तो जब मैंने ये सोचा और मैं जाने लगा तो सब जगह से कोई बहुत बड़ा रिस्पांस नहीं था कि जाने का, जब डीजी जाते हैं तो साथ में और दो अफसर भी जाते हैं साथ में, लेकिन देखने में आया तो मुझे महसूस हुआ कि डर इतना ज्यादा था कि लोगों ने जो है, मैं एक दूसरे से मैंने पूछा कि चल रहे हैं साथ, मतलब किसी ने बड़े जोश से हाँ नहीं कहा, तो मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मतलब पहला विजिट तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा और उसके बाद फिर ऑफकोर्स ऑफिस जाने लगे। तो इससे ये मुझे पता लगा कि, और मैं लगभग मुझे 2 महीना 2.5 महीना लगा, मैं सारे स्टेट में सभी जगह पे गया, तो उससे मुझे बड़ी संतुष्टि रही। और ये सब बाबा का ही टचिंग था कि मैं इस तरह का निर्णय कर पाया, सोच पाया। और जाने से बहुत अच्छा रहा और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ रहा। मुझे कोरोना हुआ पर वो 4 महीने के बाद, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो उस विजिट के कारण नहीं हुआ होगा। और देखिए, कहते तो हैं कि बाबा तो सबको निराकारी हैं और वो जो है हमारी जो है ये जिस तरह की साकारी जो सहायता वगैरह, स्थूल से सहायता वगैरह नहीं, मैं हमें बाबा को नहीं बुलाना चाहिए। मगर मुझे जब कोरोना हुआ तो ऐसा हुआ कि मैं को रात को बुखार हुआ था। उन दिनों बुखार होना माने टेस्ट कराना पड़ेगा, तो टेस्ट हुआ, मैं अगले दिन ठीक था 10 बजे ही, पर वो शाम को 4 बजे रिपोर्ट आ गई। वो ऐसे ही अब इसमें था इसके अंदर ड्रामा में, और मुझे उसके बाद 12 या 14 दिन जो है क्वारंटाइन रहना पड़ा, जबकि मैं बिल्कुल ठीक था पर अब रहना था। तो बाबा मतलब मैं देखा हूँ कि स्थूल में भी बहुत बड़ी सहायता करते हैं, और बिल्कुल जो कोरोना में मुझे कुछ पता नहीं लगा, मैं आराम ही आराम करता रहा। वैसे ज्ञान का इतना वो है कि जैसे मैंने बताया कि अब निर्णय का, बच्चों के मामले में मेरे 2 बेटी हैं, तो मतलब बच्चों के मामले में भी हम निर्णय लेना, कि हमें हमेशा चिंता रहती है उनके भविष्य की, कि भविष्य क्या होगा बच्चों के बारे में, सभी का माँ बाप का है, बड़ा नेचुरल लगता है ये। और बाबा ने कहा कि जो है आप चिंता करने से नहीं होगा, आप जो है उसके बारे में अच्छे विचार करें, अच्छे संकल्प करें। तो इस बात से मुझे ये रहा कि मैं हमेशा यही सोचूं कि बच्चों की जो है भविष्य अच्छा है और उनका फ्यूचर ब्राइट है। तो सभी को तो यही चाहिए ना माँ बाप को, कि बच्चे का भविष्य, बच्चा हमेशा खुश रहे और बच्चों का भविष्य ब्राइट है। अगर ये 2 बातें हो जाती हैं, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं किसी माँ बाप को कुछ और चाहिए, या कुछ और चाहिए तो वो भी ऐड कर लें। मगर मेन बातें इस तरह से हैं, तो उससे क्या है कि आपको चिंता नहीं रहती। इसका कारण बताने का ये है कि मैं कलकत्ता में पोस्टेड था और मेरा परिवार दिल्ली में रहता था, तो कभी अगर छोटा मोटा कभी किसी को बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई ऐसा नहीं चिंता की बात है। आपको जब भी कुछ ऐसा लगा तो भाई आप संकल्प ठीक कर लें अपने, और उन संकल्पों पर एकाग्रता रखें, थोड़ा ऐसा रहेगा। जब मेरी दोनों बेटियां को जो है वो, मैं और मेरी वाइफ, मेरी युगल हैं अंजना, जब हम दोनों कलकत्ता में थे और मेरी दोनों बेटियों को एक साथ ही वो हो गया, कोरोना हुआ, तो ये नहीं कि हमें बस चिंता थी कि भागना है। वैसे उनके चाचा वहां देखभाल कर रहे थे, बाय द वे चाचा को भी कोरोना हो गया, सभी को कोरोना, और जो है लेकिन ये संकल्प ठीक रखना कि भाई ये स्वस्थ हैं। और उसका जो है असर ये है कि आप वो ठीक है, समय लगेगा जो भी बीमारी है उसका जाने में, मगर आप अपने संकल्पों को ठीक रखते रहें तो शायद आप जो, जैसे अब तो हमें पता लग गया कि वाइब्रेशन क्या होती है, आप वाइब्रेशन दे रहे हैं, उसकी रिकवरी में सहायता कर रहे हैं एक तरह से, अच्छी वाइब्रेशन से। तो इस चिंता ना करके, और आप जो है वो भी टाइम बड़ा अच्छा बीता, तो बिल्कुल ठीक रहा। निर्णय करने के बारे में जब मुझे ये हेड ऑफ द पुलिस फोर्स का रोल करने का मौका मिला, तो मैंने एक निर्णय और समझ में आया मुझे अपने रोल के बारे में, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ना, इतना अच्छा बाबा ने कराया कि मैं तो 2 लाख में से एक ही आदमी हूं, अगर मैं किसी को सहायता भी करता हूं तो मैं क्या सहायता कर सकता हूं, अकेला आदमी है ना। ठीक है, वो क्षमताएं हैं आपकी और भी पावर्स वगैरह हैं उसे, तो मेरा मुझे ये सब चीजों में, इतने सारे रोल्स के अंदर, इतने सारे कामों में मुझे ये भी ध्यान समझ में आया उसके अंदर कि मेरा काम ये है सभी को कि उनका मैं मॉरल बढ़ाऊं, उनका जो मैं है मनोबल बढ़ाऊं, मनोबल बढ़ाना। और अगर पुलिस फोर्स के सभी मेंबर्स खुश रहें, जितना भी खुश रह सकें वो, तो वो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सिमम होगा। जो खुश होगा एम्प्लॉई, जो भी कुली खुश होगा, वो सबसे अच्छा से अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पर हम सेवादारी हैं, सभी लोग हैं, जो भी सेवादारी खुशी से कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और यदि किसी को कोई कंप्लेंट है या कोई बात है तो वो इतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे। तो मैं पुलिस फोर्स के अपने सभी मेंबर्स को सभी कॉन्फ्रेंसेज में, सभी जब भी उनसे इंटरेक्शन होता था तो यही कहता था कि आप लोग अपना खुश रहें, खुशी का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से खुश रहेंगे आप, तो आप जो है आपने पुलिस फोर्स का भला, सिर्फ आपको अपना ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान का मतलब है संकल्पों का ध्यान, क्योंकि वहां तो आप जो है ज्ञान की बात नहीं कर सकते जब कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, लेकिन आपके पास मन में जब ज्ञान है बैकग्राउंड में, तो आप घूम फिर करके संकल्पों के बारे में बात करके, और मैं देखता था उसका बहुत असर होता है। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो घटनाएं तो कुछ ना कुछ होंगी ही, कभी क्राइम है, कभी लॉ एंड ऑर्डर है, कभी और डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती रहती हैं, नेचुरल क्लैमिटीज कभी होता है। तो आप जो है जब कोई घटना हो रही है तो उसके अंदर अगर कभी कुछ खराब हुआ, तो ये भी मैं बाबा को ही धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे समझ में आया, कुछ खराब यदि हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि मेरे ही भाग्य में कभी कुछ ऐसा था जो कि ये होना था। इसके लिए जो मेरा माताहत है, जो मेरे साथ जो एसपी या कमिश्नर्स हैं या जूनियर अफसर्स हैं, वो दाई नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता था मुझे कि मन शांत रहता था, और मैं उसको ये उसके ऊपर नाराज होने की बजाय या उसके ऊपर जो है अपना धैर्य खोने की बजाय उसे ये पूछना कि भाई आपके लिए मैं क्या सहायता कर सकता हूं, और आपके लिए मैं क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स दे सकता हूं, फंड दे सकता हूं, या एडिशनल ऑफिसर दे सकता हूं, या कोई और चीज किस तरह से सहायता कर सकते हैं, ताकि जो आप काम कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आप, और मैं जो क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं ताकि आप। तो मेरा इसे बात करने का मतलब उस टाइम ये नहीं था कमी निकालना, कमी ना निकालते हुए बल्कि उसकी जो है एक्स्ट्रा सहायता करें जो आप दे सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। और ये तभी संभव था लेकिन जब मेरे मन में संकल्प ये रहेगा कि घटना तो हुई है, और घटना निश्चय ही एक दिन दो दिन जो समय लगता है वो उतना समय भी लगेगा, क्योंकि इसमें घटनाएं ऐसी हैं समाज में जो होती हैं उसमें जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है तो वो घटना एकदम से ये नहीं कि अचानक शुरू हो गई और अचानक ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बिल्डअप हुई और धीरे धीरे ही जो है खत्म होगा, वो समय लगता है आपको, उसमें आप कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये समझने से क्या रहा कि हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव माहौल रहता था, और मेरे मन में ये रहता था कि ये ठीक हो जाएगा, कभी ये नहीं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि आउट ऑफ कंट्रोल। मैं हमेशा अपने जो मेरे कुलीग थे उनको ये कहता था कि ये ठीक हो जाएगा, तुम कोशिश करते रहो। और मेरे इस बार बार सोचने से मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग सीखते हैं सभी कि सुबह उठ के परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, सबके बारे में, पूरे संसार के बारे में हमें वाइब्रेशन देनी है। तो मैं अपने स्टेट के बारे में, और जो मेरा विशेषकर मेरा कार्य था कि हमारे यहाँ जो है सभी लोग, सभी जो जनसंख्या है, सभी जो रहने वाले हैं सिटीजन्स हैं वेस्ट बंगाल के, सब खुश हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत, सिचुएशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, और यदि कोई विशेष घटना होने वाली, कोई प्रोग्राम होते हैं विशेष, वो समय जो है बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरह के विचार करने से मुझे हमेशा जो है बड़ी पॉजिटिविटी रहती थी, और मेरे को बड़ा फायदा हुआ उससे, और ये मेरे जितनी भी टीम थी टीम के अंदर भी पॉजिटिविटी रही। और मुझे वो 3 साल के करीब काम करने का मौका मिला, तो उसमें क्या हुआ कि वो समय के साथ साथ, पहले पहले तो लोगों को विश्वास नहीं होता इन बातों पर, मेरे माता-पिता को भी थोड़ा ऐसे ही रहा, लेकिन धीरे 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 मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उसमें समझने लगे। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि हम अपने पे विश्वास करें, ये वाइब्रेशंस जो हैं, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसका असर है, दूसरी साइड कैसी भी हो, कुछ भी अवस्था हो, हमें केवल अपनी अवस्था का ध्यान रखना है। मैं जितना एकाग्र रहूंगा, जितना मैं बाबा के साथ कंबाइंड रहूंगा, जितना बाबा की लाइट में सकाश में सब पर भेजूंगा, वो उसका सिचुएशन का पूरा पॉजिटिव असर पड़ेगा, सबसे बड़ा असर वही है। इसी बात का ये जो मैं बताया कि मैंने कि पॉजिटिव उसका बड़ा असर पड़ता है, तो मेरी छोटी बेटी की बेटी है, ग्रैंड डॉटर है, वो अभी तो 9 साल की हो गई है, और वो 3-4 साल की जब से देखो कि मैं तो 9 साल से हूँ, तो जो जब जन्म हुआ तब से ही मैं ज्ञान में हूँ। तो अब जो हम लोग ज्ञानियों की ये बड़ी वो जो राजयोग करते हैं उनकी प्रॉब्लम है कि बच्चों को भी बताते रहते हैं, तो मैं उसको भी बताता रहता हूँ। और वो जो है जो छोटी बच्ची है वो धीरे 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 उसको भी कुछ पिकअप हो गए बहुत सारे पॉइंट्स। तो मैं ये देखता था कि जो है ये जो प्यार की बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों के मामले में भी हम ये बात का करके देखें एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारों ने सचमुच किया होगा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, मगर मैं अपनी बात बताना चाहूंगा कि प्यार से हम भरोसा रखें प्यार के ऊपर। बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए किसी तरह से हम जो है नेगेटिव उसका जो है अपने को अवॉइड करें जितना भी संभव हो हमारे लिए। मुझे मालूम है कि ये संभव नहीं है मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी कभी छोटी बच्ची के ऊपर कभी कभी जबकि वो मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं, कभी इरिटेड हो जाता हूं, लेकिन मैं जब देखा जब भी मैं प्यार से बात कर रहा हूं, ज्यादा प्यार वो कर रहा हूं और जो मैं संकल्प कर रहा हूं उसका असर धीरे 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 फोर्स उसके ऊपर भी हो रहा है। यानी कि हर आत्मा के ऊपर ये इतना अच्छा वो है एक्सपीरियंस कि उसका आपको सामने सबूत नजर आता है। और ये एक्सपीरियंस अपने साथ रखें आप। और यहां पर जैसे संसार में तो लगता है कि नेगेटिव फोर्सेज बहुत स्ट्रांग हैं, जीत जाएंगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बड़ा क्लियर है, उसमें कोई संदेह नहीं है, पूरे विश्वास की बात है कि वहां पर पॉजिटिव फोर्स ही जीतेंगी, वहां पर किसी भी तरह संभव ही नहीं है। बस हम अपना विश्वास बनाए रखें। जो मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, तो एक्सपीरियंस शेयर करने का मैंने भी ये नोट किया एक बात कि कुछ समय से मैं करता आया हूं, क्योंकि ज्ञान में यहां पर एक प्रथा है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करने से आप भी करते होंगे कि हमने देखा है कि मैंने देखा कि मेरी अपनी कन्विक्शन जो धारणाएं मजबूत होती हैं, और कभी कभी किसी को यदि कोई एक्सपीरियंस अच्छा लग जाता है तो हो सकता है किसी में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन अपनी धारणाओं के लिए बड़ा अच्छा रहता है और दूसरों को जो ज्ञान समझाने में बताने में जो है इसका बड़ा फायदा है। हमारे जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो किस तरह से असर हम पे जो है हमें छोड़ती हैं हमारे में। लास्ट ठीक है बहनी छोड़ती हैं, तो आई विल टेक अनदर 2 मिनट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार मुझे प्लेन से जाने का मौका मिला, तो उसका जो है उसमें जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो उसमें जो है ऐसा कुछ हुआ कि आग लगने की वो हो गई, पीछे से आवाज आई और लोगों ने जब वो टेक ऑफ कर रहा है रनवे पे दौड़ रहा है तो लोगों ने अपनी बेल्ट खोल दी जो पीछे बैठे थे और भागने लगे आगे, जबकि होता ये है कि सबको अपना सिक्योर होके बैठना है। तो अब ये हुआ तो जब ये इतना शोर शराबा होने लगा चिल्लाने लगे लोग, तो किसी ने एयर होस्टेस को कहा कि अंदर पायलट को बता दीजिए कि ऐसा हो गया है यहां पर आग लग गई है पीछे। तो उसने बताया कि एयर होस्टेस ने कि सर ये सिस्टम यहां पर ऐसा है कि जब आप रनवे पे होते हैं, जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो जो आप केबिन का जो है कॉकपिट से संबंध कनेक्शन कट हो जाता है, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते पायलट को, ये इसलिए है बेसिकली। तो अब तो इसका मतलब पीछे से आग लगी हुई है, सब जो आदमी सभी जितने भी लोग थे चिल्ला रहे थे, तो मैं भी उसमें था, तो मुझे हमने राजयोग सीखा हुआ है तो उस टाइम यही याद आया कि बाबा को याद करना है, तो वो जो है बाबा को याद करना शुरू किया तो योग लग गया। और मुझे ज्योति बिंदु दिख रहे थे मुझे, तो मैं यही कह रहा था उनको कि बाबा अंत समय है और आप जो है साथ रहिएगा। मुझे उस टाइम थोड़ी सी चिंता या कहिए कंसर्न ये था कि मेरा योग ना टूट जाए कहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मैं उसमें बच गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि स्थिति कैसी थी उस टाइम जब घटना हो रही थी। तो मुझे लेकिन ये कन्फर्म था कि मृत्यु पक्की है, क्योंकि अब वो टेक ऑफ कर रहा है, वो एयर होस्टेस कह रही है बता नहीं सकते अंदर आग लग गई है तो क्या होगा। तो ये जो है ये मैं एक साधारण आदमी हूं, पर मैं देखा ये राजयोग का कंट्रीब्यूशन है, ये राजयोग के कारण है कि आपके मन से जो है डर निकल जाए और इस स्थिति में हम अपने को स्टेबल कर सके। घटना ये इसलिए हुई थी एक्चुअल में कि मैं आपको बताऊं कि वो जो ये प्लेन के अंदर जो है ना हवा सक करते हैं इंजन के लिए तो पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर, छिद्र जो होते हैं उनसे हवा आती है, उसी हवा से जो हम लोग केबिन में बैठे होते हैं हमारे लिए भी ऑक्सीजन उसी से आती है। तो हुआ क्या था, बर्ड हिट होने से जो है हवा बदबू आई बहुत ज्यादा, तो मुझे पहले बदबू आ गई थी इसलिए मुझे बाद में कंफर्म था कि जब आग लगी है तो गैस लीक हुई है और ये होगा। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद टेक ऑफ किया और फिर वापस लैंड किया। तो ये जो बातें हैं, एक साधारण आदमी मृत्यु के सामने जब लगे काफी हद तक मुझे कंफर्म था, तो और ये जो है कि डर नहीं लगा उस टाइम ये लगा ठीक है। तो इस प्रकार के जो अनुभव हैं, ये जो ये है, ये चेंजेज आ रहे हैं इसके अंदर धीरे धीरे, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेज आपसे शेयर किए इसीलिए कि किसी को प्रेरणा मिल सके इससे। और मैंने इसे बताया कि मैं एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर करता हूँ कि जब भी मौका मिलता है तो मेरी धारणा भी पक्की होती है इससे। और मैं इसके साथ ही, अब समय हो गया है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
ओम शांति। मेरे युगल तो आ गए थे 8-9 साल पहले उसमें, पर मैं अभी 1.5-2 साल से ज्ञान में आई हूँ और इनका संकल्प देखकर ही मैं आई हूँ। और इनका ये संकल्प मैंने कोविड के टाइम ही देखा था। कोविड के टाइम मेरी नंद बहुत बीमार थी, मतलब उनका लंग्स का रिपोर्ट 25 में से 25 था। और इनका संकल्प ये था, ये अपने भाई से बात करते थे कि तुम सिर्फ एक ही संकल्प रखो कि वो राखी के दिन हमें राखी बांध रही है। तो मैंने इनकी स्थिति इतनी मजबूत देखी तो धीरे धीरे मेरा भी विश्वास उसमें बढ़ता गया। उसके बाद मैं खुद कोविड से बाहर आई और उसके बाद मैंने सेंटर जाना शुरू किया। वहां मुझे मेरे प्रश्न, कई प्रश्नों के उत्तर मिले, मैं कौन हूं। और फिर हम सब एक उसमें उलझे रहते हैं कि किसकी पूजा करें, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, किसकी। तो उन सब सवालों का जवाब मुझे यहाँ मिल गया, उनको विराम मिला। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं यहाँ ज्ञान में चलती रही। और मैं नॉनवेज तो पहले भी नहीं खाती थी, पर मैंने फिर ये लहसुन प्याज सब छोड़ दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने दिसंबर में अपनी बेटी की शादी करी, तो मेरे दिमाग में बहुत हलचल थी कि अब हम खाते नहीं हैं, अब शादी का अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे। आजकल दिल्ली में तो कोई शादी बिना नॉनवेज के, बिना लिकर के, बिना अल्कोहल के होती नहीं है। पर मेरे मन में एक संकल्प था कि ये शादी में मैं नॉनवेज सर्व नहीं करूं, लिकर सर्व नहीं करूं। तो और बाबा का कमाल देखिए कि जब हम केटरर ढूंढ रहे थे तो हमें जो केटरर मिले वो ब्रह्म कुमारी उसको फॉलो करते थे। और हमने उनको बोला, भैया हमारे मन में ये इच्छा है कि आप खाना बनाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे। जैसे एक ब्रह्म बोझ बनता है शादी का खाना, इस तरह बनना चाहिए। और हम लोग के यहाँ प्रथा है कि एक थाली निकाली जाती है खाने की, तो हमने कहा आप ही भोग लगा दीजिए खाने को और ब्रह्म बोझ की तरह खाने को बनाइए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा उसमें कि बाबा ने इतना कमाल कराया कि खाना बहुत अच्छा बना और सबने उसकी इतनी तारीफ करी। और हमने अपने दामाद से भी बात करी कि बेटा हमारी इच्छा है कि हम शादी में लिकर सर्व नहीं कराएंगे, आपको जहां करना है दूर, जहां करना है जो करिए, पर हम यहाँ फेरों की वेदी पर यहाँ पे हम नहीं कराएंगे। मतलब एक बार भी ना नहीं आई, मतलब एक सेकंड में जैसे किसी ने उस बात को मान लिया और कहने लगे हाँ हाँ नहीं मम्मी जी, ये तो पूजा का काम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बाबा का कमाल देखती रह गई। और मतलब धीरे धीरे मैंने ये देखा कि अपने संकल्पों में बहुत ताकत है। अपने संकल्प अगर आपने करा है और उस पर आपकी निष्ठा है और भरोसा है तो बाबा आपके साथ है। और ये प्रेरणा मुझे वहां से आई कि मैंने राष्ट्रपति जी के बारे में सुना कि वहां पे नॉन वेज बंद हो गया है, लीकर बंद हो गई है। मैंने कहा अगर वहां हो सकती है तो मेरी शादी में क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब और दिन पे दिन अब एक ये हो गया कि बाबा है तो सब कुछ है, मतलब बहुत निश्चिंतता आ गई है दिमाग में। तो मैं आप सबसे सिर्फ अपना इसलिए शेयर कर रही हूं कि अपने संकल्पों की शक्ति को पहचानिए और अपने पे भरोसा रखिए, बाबा है तो सब संभव है। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर अनुभव हमने आप दोनों से सुना, और सचमुच जब सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ में है तो कोई भी बात असंभव हो ही नहीं सकती। हमारे संकल्प में ही इतना बल भर जाता है कि हम संकल्पों में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और वो सारे संकल्प हमारे प्रमाणित होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा पिता का अनुभव करते हुए हम अपने इस संगम युग में आगे बढ़ते रहें। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।